नमस्कार भारत 29 अगस्त दिन सोमवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता संकट में, जर्मन मंत्री ने कहा विफल हो चुकी है वार्ता। जानिए आजमगढ़ की रैली में क्या बोली मायावती। और शनि शिगणापुर और हाजी अली दरगाह के बाद केरल का शबरीमाला मंदिर, भूमाता ब्रिगेड का अगला मिशन।
15 दिन के बाद जो है वो हम वहाँ पे जाके ट्रस्टियों से मिलेंगे, उनसे विनती करेंगे, अगर उन्होंने नहीं सुना तो वहाँ पे हमारा आंदोलन शुरू होगा।
सुनिए खेलों पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमर शर्मा से। जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री जिगमार गाब्रियल ने कहा है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर हो रही वार्ता विफल मानी जानी चाहिए। जर्मनी के उप चांसलर गाब्रियल का कहना है कि अमेरिका की मांगों के सामने यूरोपीय देश झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। 14 दौर की वार्ता में 27 मुद्दों में से एक पर भी रजामंदी नहीं बन पाई है, क्योंकि अमेरिका इस बात पर गुस्सा है कि यूरोपीय संघ कनाडा के साथ भी मुक्त व्यापार पर एक करार कर रहा है। लातिन अमरीकी देश कोलंबिया में सबसे बड़े विद्रोही समूह फार्क ने ऐलान कर दिया है कि अब वो सरकार के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा। क्यूबा की राजधानी हवाना में 4 साल पहले शांति वार्ताएं शुरू हुई थी। फार्क नेता टिमोचेनको ने अपने सभी लड़ाकों को रविवार रात 12 बजे से निश्चित संघर्ष विराम के पालन का आदेश दिया है। क्यूबा में बीबीसी संवाददाता ने कहा है कि इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद 50 सालों तक चला लंबा संघर्ष समाप्त हो गया है, जिसमें करीब 260,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग विस्थापित हो गए। अंतिम शांति समझौते पर अगले कुछ हफ्तों में मुहर लगेगी। यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देशों ने अपने यहां आने वाले प्रवासियों को शरण देने से इनकार करने पर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने आलोचना की है। मर्केल ने कहा है कि ये स्वीकार्य नहीं है कि ईयू के कुछ सदस्य कह रहे हैं कि वे अपने देशों में किसी मुसलमान को नहीं रखना चाहते। उन्होंने कहा कि प्रवासी समस्या का समाधान मिलकर करना होगा और ईयू के सभी सदस्यों को अपनी भूमिका निभानी होगी। मर्केल ने कहा,
Ich glaube, dass wir eine gemeinsame Lösung finden müssen und dass jeder seinen Anteil zu dem gesamten
Thema सभी देशों को अपने हिस्से का काम करना होगा, जिससे प्रवासी समस्या के बोझ को कम किया जा सके। अगर कई देश कहेंगे कि वे अपने यहाँ मुसलमानों को नहीं रखना चाहते, भले ही ये मानवीय आधार पर सही हो या नहीं, तो इससे बात नहीं बनेगी। हमें अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी में काम करना होगा ताकि पलायन को सीमित किया जा सके। एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में एक वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। वीडियो में एक रेस्तरा मालिक 2 मुसलमान महिलाओं को खाना परोसने से मना कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में हिजाब पहने 2 महिलाओं से रेस्तरा मालिक कहता है कि चरमपंथी मुसलमान होते हैं और मुसलमान चरमपंथी होते हैं। यह घटना शनिवार रात पेरिस के नजदीक ले सेनाकल रेस्तरा की है। फ्रांस की सरकार में एक मंत्री लॉरेंस रोजिगनो ने कहा है कि उन्होंने नस्ल विरोधी सरकारी संस्था से मामले की जांच करने को कहा है और इस घटना को असहिष्णुता बताया है। इराक के विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब से बगदाद में तैनात अपने राजदूत को बदलने को कहा है। ईरान के बारे में सऊदी राजदूत तमर अल सवाहान के कई विवादित बयानों के कारण कई इराकी शिया राजनेता उन्हें देश से निकालने की मांग कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। 28 देशों वाला यूरोपीय संघ, उसकी आबादी है 51 करोड़ और अमेरिका की आबादी 32 करोड़। जितनी बड़ी आबादी उतना ही बड़ा बाजार और उतना ही ज्यादा कारोबार, और कारोबार को आसान बनाने के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिका 2013 से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन 14 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में इस वार्ता को विफल न माना जाए तो क्या माना जाए, ऐसा कहना है जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री जिगमार गाब्रियल का। ये बयान बहुत अहम है क्योंकि जर्मनी को यूरोपीय संघ का सबसे अहम देश माना जाता है। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा अमर शर्मा से।
जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री जिगमार गाब्रियल ने कहा है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर हो रही वार्ता विफल मानी जानी चाहिए। जर्मनी के उप चांसलर गाब्रियल का कहना है कि अमेरिका की मांगों के सामने यूरोपीय देश झुकने को तैयार नहीं है। अगर ये करार हो जाता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएगा। मुक्त व्यापार क्षेत्र के तहत आयात निर्यात पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, नियामक कानून, ड्यूटी, कोटा और कर को सरल बनाया जाता है। इससे दो देशों या क्षेत्रों में उत्पादन की लागत भी कम हो जाती है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच ऐसा क्षेत्र कायम करने की कोशिश फिलहाल कामयाब होती नहीं दिख रही है। बर्लिन में गाब्रियल ने कहा कि यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच अलग से हुए एक करार को लेकर अमेरिका नाराज है। उन्होंने कहा, मेरे आकलन के मुताबिक अमेरिका के साथ चल रही वार्ता असल में विफल हो गई है। हालांकि कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं है। 14 दौर की वार्ता में 27 मुद्दों में से एक पर भी साझा बयान नहीं आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका अपने लिए तो चीजों को चाहता है, लेकिन कनाडा के लिए नहीं। अमेरिका इस बात पर गुस्सा है कि कनाडा यूरोपीय संघ के साथ करार कर रहा है। अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। जिगमार गाब्रियल के शब्द। साल 2013 में ट्रांस एटलांटिक व्यापार और निवेश भागीदारी करार को लेकर वार्ताएं शुरू हुईं, लेकिन तभी से इसका विरोध भी हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि इस सौदे से सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और उपभोक्ताओं का नुकसान होगा। जर्मनी में भी इसका विरोध हो रहा है। आलोचकों ने वार्ता के विरोध में अगले महीने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अमरीका और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार क्षेत्र को लेकर इस साल के आखिर तक कोई समझौता करना चाहते हैं, लेकिन फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वाल को ऐसा होना संभव नहीं लगता है। वहीं जर्मन अर्थव्यवस्था मंत्री जिगमार गाब्रियल भी इस बारे में किसी तरह की जल्दबाजी के हक में नहीं हैं। वो कहते हैं, अमेरिका के प्रस्तावों पर हमें किसी भी हाल में नहीं झुकना चाहिए। यूरोप में मिलजुल कर रहने का चलन है। इन बातों में एहतियात बरतने का सिद्धांत भी है, जिसका उल्लेख मौजूद है। यूरोप और कनाडा के बीच हुए समझौते में ये लिखित तौर पर मौजूद है। जिगमार गाब्रियल के शब्द। समाचार एजेंसी AFP ने कुछ वरिष्ठ राजनयिकों के हवाले से कहा है कि नवंबर में होने वाले अमरीकी चुनाव और अगले साल फ्रांस और जर्मनी में होने वाले चुनावों तक ट्रांस एटलांटिक व्यापार और निवेश भागीदारी करार को लेकर हो रही वार्ता टल सकती है। यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच करार साल 2014 में औपचारिक तौर पर पूरा हो चुका है। इसे लागू करने के लिए यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संसद के समर्थन की जरूरत है।
BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार आपको सुना रहे थे अमर शर्मा।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत का। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तीखा होता चला जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रैली की और उनके निशाने पर थी राज्य की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी। उधर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा है कि BSP की जमीन खिसक रही है और इससे मायावती बौखला गई हैं। सुनिए निखिल रंजन की रिपोर्ट।
पूरे प्रदेश में खासकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, अराजक, अपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल यहाँ काफी ज्यादा आसमान तक पहुँचे हुए हैं।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कल आजमगढ़ की रैली में कुछ इसी अंदाज में विरोधियों पर हमला किया। मायावती ने ये आरोप भी लगाया कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदरखाने गठबंधन हो चुका है।
उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब BJP व सपा के अंदरूनी मिली भगत भी यहाँ BSP को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी।
मायावती ने आजमगढ़ के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर क्षेत्र के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इससे BJP की कमजोरी जाहिर होती है।
इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि अब ये पार्टी BSP के रिजेक्टेड माल को भी बिना कोई जांच पड़ताल के उन्हें बहुत आसानी से लेने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही
उनके गले में अपनी वफादारी का पट्टा भी अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह खुद पहनाते हैं, किसको जो बीएसपी का रिजेक्टेड माल है।
मायावती के आरोपों पर विरोधी दल के नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बीएसपी का आधार खिसकने की वजह से मायावती ऐसे आरोप लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के साथ गठजोड़ के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए याद दिलाया कि पूर्व में बीएसपी ने ही बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अशोक वाजपेयी ने कहा,
मायावती जी देख रहे हैं कि उनकी जमीन खिसक रही है। देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा करने का या धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ने के लिए जितना काम मजबूती से समाजवादी पार्टी ने किया है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। और सुश्री मायावती जी जो तीन तीन बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी है, उनको ये कहते हुए शोभा नहीं देता।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी मायावती पर पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मायावती अपने पूर्व नेताओं को रिजेक्टेड माल कहकर उनका अपमान कर रही हैं।
ये उनकी समझ के ऊपर मुझको तरस आता है। पिछली लोकसभा के अंदर जो उनके दल के नेता थे वो भाजपा के साथ हैं, श्री दारा सिंह चौहान। जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके विधानमंडल दल के नेता थे वो भाजपा के साथ हैं। इससे उनको चिंतित होना चाहिए और इस प्रकार की रिजेक्टेड माल कहकर के अपने ही निर्णयों को, अपने ही चॉइस को, अपने ही जो कार्यकर्ताओं को जो उनके सहयोगी रहे उनका और एक प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं को, अपने ही कार्यकर्ताओं का अवमानना कर रही है, अपमान कर रही है। आज बसपा सबसे कमजोर राजनीतिक दल के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर है।
उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में ताल ठोकते राजनीतिक दलों के तीखे तेवर संकेत दे रहे हैं कि आगे सियासी मुकाबले का अंदाज कैसा होगा। लखनऊ की रेस में खुद को आगे बता रही सभी पार्टियां चुनाव तक विरोधियों के प्रति सम्मान की भावना दिखाएंगी, ऐसे आसार नहीं दिखते।
ये थे निखिल रंजन। हाल में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की हाजी अली दरगाह में मजार तक महिलाओं को जाने की इजाजत दी। हालांकि अभी ये आदेश लागू नहीं है, इस पर 6 हफ्ते का स्टे है और दरगाह ट्रस्ट इस आदेश को चुनौती देने का मन बना रहा है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के लिए मुहिम चलाने वाले संगठन भूमाता ब्रिगेड की सदस्य तृप्ति देसाई कल हाजी अली दरगाह गईं और उनके साथ कई और महिलाएं भी थीं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने तृप्ति देसाई से बात की और पूछा कि अभी महिलाओं को मजार तक जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में वो दरगाह क्यों आई हैं।
हाईकोर्ट ने जो आदेश किया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आदेश है और जो विरोधक है जिनको सुप्रीम कोर्ट जाना है उनके लिए 6 हफ्तों की स्थगित है। लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा या कहीं भी जाएगा तो फिर एक बार जो है वो निर्णय हमारे पक्ष से होगा, फिर से संविधान की जीत होगी और महिलाओं को मजार तक प्रवेश मिलेगा, ये 100% हमें जो है वो आत्मविश्वास है।
जिस जगह जाने की आप लोग इजाजत चाहते थे अभी वो इजाजत आपके पास नहीं है, तो क्या उद्देश्य था आपका हाजी अली की दरगाह तक जाने का।
हाजी अली दरगाह में जब आंदोलन किया तब हाजी अली दरगाह में हमने दर्शन लिया था और वहाँ पे हमने दुआ भी मांगी थी कि हाईकोर्ट का निकाल हमारे बाजू से हो, महिलाओं को मजार तक प्रवेश करने का जो है वो निर्णय हमारे बाजू से हो। वो निर्णय हुआ और उसके बाद तुरंत जो है वो हमारी दुआ पूरी हो गई, इसलिए दर्शन लेने वहाँ पे चादर चढ़ाने जो है वो आज वहाँ पे हम गए थे और वहाँ के ट्रस्टियों से भी आज हमने बात की, उनको भी हाथ जोड़ के विनती की है कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाए। हाईकोर्ट ने जो इतना बड़ा फैसला दिया है जो महिलाओं के लिए यहाँ पे असमानता थी उसके बारे में जो है वो समानता का न्याय दिया है, उसका स्वागत करके आप तुरंत जो है वो मजार तक महिलाओं को प्रवेश शुरू करिए।
तो उनका क्या जवाब था।
एक ही ट्रस्टी आज वहाँ पे हमें मिले, उन्होंने कहा कि मुझे सभी ट्रस्टियों से बात करनी पड़ेगी, मेरे हाथ जो है वो कोई फैसला नहीं है। और बाद में उन्होंने कहा कि ये इस्लाम धर्म में जो है वो उसके खिलाफ है, हम नहीं कर सकते, ये गलत मांग है। लेकिन हमने उनको वही समझाया कि ये धर्म के खिलाफ की कभी लड़ाई नहीं थी।
शनि शिगणापुर से लेकर हाजी अली की मजार तक ये एक लंबा आपने सफर तय किया है, क्या आपका अभियान यहाँ पूरा होता है या आगे भी आपका कोई और लक्ष्य है।
बिल्कुल हमारा अभियान पूरा नहीं होता है क्योंकि शनि शिगणापुर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, महालक्ष्मी मंदिर हो और हाजी अली दरगाह, इसके बाद भी सभी जगह जो है वो सभी जाति धर्मों के मंदिरों में, प्रार्थना स्थलों में महिलाओं को समानता का दर्जा मिलना चाहिए, सभी जगह जो है वो महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा और ये लड़ाई अभी नेशनल लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। तो अगला जो हमारा मिशन होगा ये शबरीमाला मंदिर जो केरल में है वहाँ पे महिलाओं को एंट्री नहीं है, तो 15 दिन के बाद जो है वो हम वहाँ पे जाके ट्रस्टियों से मिलेंगे, उनसे विनती करेंगे, अगर उन्होंने नहीं सुना तो वहाँ पे हमारा आंदोलन शुरू होगा।
ये थी भूमाता ब्रिगेड की सदस्य तृप्ति देसाई, जिनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
पिछले दिनों उड़ीसा में कंधे पर अपनी पत्नी का शव लिए 10 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले दाना माझी की कहानी ने दुनिया भर के बहुत से लोगों को झकझोर दिया। इनमें पाकिस्तान के वसुतुल्ला खान भी शामिल हैं, लेकिन इस घटना के साथ ही उन्हें कई और बातें भी याद आ गईं। सुनिए उन्हीं की जुबानी।
किसी को याद है भोपाल गैस ट्रेजेडी? अभी 32 वर्ष पहले ही की तो बात है। याद नहीं उस बच्चे की ब्लैक एंड वाइट फोटो जिसका बस चेहरा ही मिट्टी से बाहर था और उस चेहरे पे धरी दो खुली आंखें जैसे बादाम के खाली छिलके? कैसी झुरझुरी आई थी उस तस्वीर को देख के, और फिर कितना गुस्सा आया था यूनियन कार्बाइड कंपनी, लालची नेताओं और पत्थर दिल राष्ट्र पे। मेरी तो पूरे 7 दिन तबीयत खराब रही, पूरे 7 दिन। अफ्रीका में भूखमरी खबर थोड़ी है, अफ्रीका तो बना ही भूख, बीमारी, जंगों और लूटमार के लिए। फिर भी हम लोगों का दिल पत्थर का तो नहीं है। 1993 में एक अमरीकी फोटोग्राफर ने सूडान में एक तस्वीर खींची जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। तस्वीर में एक बच्चा ऊंधे मुंह पड़ा मर रहा है और उसके बिल्कुल पीछे एक गिद्ध इस बच्चे की सांसें गिन रहा है। तस्वीर इतनी दुख भरी थी कि इसे खींचने वाले फोटोग्राफर ने 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली। किसी और ने भी आत्महत्या की होती तो खबर ज़रूर आती। अभी पिछले वर्ष ही की तो बात है, एक 3 साल के बच्चे ईलान अल कुर्दी की लाश तुर्की के साहिल पर ऊंधे मुंह पड़ी मिली थी। इस तस्वीर ने दुनिया को सीरिया में होने वाली ट्रेजेडी की गंभीरता बताई। खुद मुझे 3-4 दिन तक अपने इंसान होने पे शर्म आती रही। और 2 हफ्ते पहले इसी सीरिया के शहर अलीपो के 5 वर्ष के बच्चे उमरान दगनीश की तस्वीर वायरल हो गई, जिसे मलबे से निकाल के एम्बुलेंस की कुर्सी पे बिठा दिया गया था। करोड़ों लोगों ने इस तस्वीर को शेयर किया। दुख भी हुआ कि उमरान का एक भाई मर गया, मगर खुशी भी हुई कि उमरान तो बच गया कम से कम। लेकिन साहब, उड़ीसा के इलाके भवानीपटना के अस्पताल से अपनी पत्नी की लाश कंधे पे उठा के 12 किलोमीटर पैदल चलने वाले दाना माझी और उसकी बेटी की तकलीफ मुझे आज भी उतना ही बेकल कर रही है कि क्या बताऊं। कल रात सुनील की पार्टी में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। शिवास का पैग सामने पड़ा रहा, मुझसे तो एक सिप तक नहीं लिया गया। कैवियार के काले मोतियों जैसे चमकते अंडों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा गया। हालांकि सुनील ने ईरान से $1,000 फी पाव के हिसाब से खास मेरे लिए मंगवाए थे। मैं जब भी कैवियार का चम्मच भरता, दाना माझी के कंधों पर रखी लाश सामने आ जाती। कितने दुख की बात है कि दाना माझी के पास बीवी की लाश अस्पताल से घर ले जाने के पैसे नहीं थे, और यहाँ मेरी बीवी को इसी हफ्ते मर्सिडीज़ एस ख़रीदनी है क्योंकि पिछले साल की जैगवर एफ से उसका जी भर गया है। वैसे दाना माझी की कहानी पूरे देश के मुंह पे एक तमाचा है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। इतनी संगदिली, तौबा तौबा तौबा। अगर मुझे कल एक हाईवे कॉन्ट्रैक्ट का 1,500 करोड़ रुपए का टेंडर ना भरना होता तो मैं ज़रूर दाना माझी के गांव जाता। पर कोई बात नहीं, कौन सा ये आखिरी दाना माझी है, नेक्स्ट टाइम चला जाऊँगा अगर टाइम मिला।
ये थे वसुतुल्ला खान, और अब बारी कार्यक्रम में अखबारों की समीक्षा की। हमारे साथ मौजूद हैं अमर शर्मा।
जी अशोक, आज तमाम अखबारों ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को बहुत तवज्जो दी है और उसे अपनी पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने लिखा है कि कश्मीर में जान किसी की भी जाए, नुकसान देश का है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और वही महबूबा मुफ्ती कहती हैं, क्या कश्मीर में सीरिया और लीबिया जैसी आज़ादी चाहते हैं? ये इस खबर को तमाम अखबारों ने बहुत तवज्जो दी है। हिंदू ने लिखा है कि पीएम पीचेस फॉर कंपैशन, यूनिटी टू एंड कश्मीर क्राइसिस। और यहाँ प्रधानमंत्री के उस बयान पर कि वो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में और वहां से जो विस्थापित होकर जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनके लिए 2,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की ऐलान की है। इस खबर को भी बहुत तवज्जो दी गई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 50% राज्य GST बिल जो संसद में पेश होने वाला है इसको समर्थन दे सकते हैं और वो सितंबर के शुरुआत में ऐसा संभव है।
संसद में पारित हो गया
है। हाँ, और पारित हो गया, ये अपने अपने राज्य हैं वो अपने यहाँ पारित करेंगे इसे, और ये जो शीतकालीन सत्र है वो जल्दी बुलाया जा सकता है। एक और बहुत एक खबर है जो आपको काफ़ी आप न्याय प्रणाली के बारे में आपको हैरत में डालेगी कि देश के जो हाईकोर्ट हैं उनमें महिला जजों की संख्या पुरुष जजों के मुकाबले में सिर्फ 10% है। अच्छा। इस खबर के मुताबिक इन्होंने बताया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि 534 पुरुष जजों की तुलना में 24 हाईकोर्ट्स में भारत के सिर्फ 61 महिला जज हैं।
अच्छा।
और लेकिन जिन हाईकोर्ट्स में महिला जज हैं चीफ जस्टिस वहाँ उनकी संख्या थोड़ी बेहतर है, जैसे दिल्ली
जी।
दिल्ली में 10 महिला जज हैं हाईकोर्ट में। सचिन तेंदुलकर ने कल जो ओलंपिक से जो जीत कर आए हैं खिलाड़ी पीवी सिंधु और ये तीनों
उनको दीपा कर्माकर
BMW कार दिया है। दी हिंदू ने इसको अपने इस तस्वीर को पहले पन्ने पर
कल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है।
इसको दूसरे एकदम ठीक बगा हेडलाइन के बराबर में इसको जगह दी है और इसको अमर उजाला ने भी अपने यहाँ पर जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको पहले यहाँ पर जो खिलाड़ी प्रधानमंत्री से कल मिले हैं इसको उसने अपने यहाँ जगह दी है पहले पन्ने पर हेडलाइन के ठीक बराबर में। आपको बताएं दैनिक जागरण में खबर छपी है कि बलूचिस्तान पर चीन ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने जो ये ऐलान किया है पैकेज का वहां से विस्थापित लोग जो कश्मीर में रह रहे हैं पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से, अगर ये उसके जो वहाँ उसकी परियोजना है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पैदा होती है तो बीजिंग चुप नहीं बैठेगा और वो बलूचिस्तान मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की तमाम जानकारी के लिए। समय हमारे पास कम है और अब चलते हैं खेलों पर, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी की तरफ।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अमेरिका में खेला गया दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल बारिश की भेंट चढ़ गया। भारत के सामने जीत के लिए 144 रनों का लक्ष्य था और जब दो ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 15 रन था तब बारिश शुरू हो गई। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने जॉनसन चार्ल्स के 43 रनों की मदद से 19.4 ओवर में 143 रन बनाए। इसके साथ ही वेस्ट इंडीज ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की। और अब बात दादा ध्यानचंद खेल दिवस और आज ही भारतीय खिलाड़ियों को मिलने वाले सम्मान की। आज अपने जमाने में हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले दादा ध्यानचंद का जन्म दिवस है। आधुनिक भारत में इसे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादा ध्यानचंद उस टीम के सदस्य थे जिसने साल 1928 में एम्स्टर्डम और 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के तो वो खुद कप्तान थे। तब भारत ने फाइनल में मेजबान जर्मनी को 8-1 से मात दी थी। दादा ध्यानचंद का देहांत साल 1979 में 74 साल की उम्र में हुआ लेकिन आज भी उनका नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है। उनके नाम के साथ अनेक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। उन्हें उनके पुत्र साल 1975 में भारत को अपने गोल से विश्व चैंपियन बनाने वाले पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार ऐसे याद करते हैं मानो वो कल की ही बात है।
जब हॉकी और एक जेसी ओवेंस एथलीट का नाम आता है तो उसमें हिटलर का नाम भी जुड़ा है कि वो तानाशाह ही नहीं था बल्कि एक खेल प्रेमी भी रहा होगा और था जिसकी बदौलत जेसी ओवेंस चाहे उसने उस नफरत की निगाह से देखा लेकिन उसने उसको अप्रिशिएट किया और ध्यानचंद से तो बातें हुई उनकी। उनको ऑफर भी किया कि जर्मन में मैं उनको रख लूंगा अच्छी पोस्ट पर जबकि मेरे पिताजी उस टाइम लांस नायक थे 1936 में लेकिन उनका जवाब ये था कि नहीं मेरा मुल्क है। तो ऐसे भी लोग पैदा हुए उनके लिए पैसा ही नहीं देश की इज्जत सर्वोपरि थी।
आज रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक, जिम्नास्ट दीपा कर्मकार और निशानेबाज जीतू राय को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा तीरंदाजी में रजत चौहान, एथलेटिक्स में ललिता बाबर, मुक्केबाजी में शिव थापा, फुटबॉल में सुब्रत पाल, महिला पहलवान विनेश सहित 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिव थापा को मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार मिलने से खुश हैं भारत के पूर्व एशियन चैंपियन मुक्केबाज राजकुमार सांगवान।
उसे ये अवार्ड बिल्कुल टाइम पे मिल रहा है, शिवा की एज अभी 23 ईयर है और इस एज में अर्जुन अवार्ड से उसको काफी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि शिवा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज जीता है और करंट एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट है। बिल्कुल डिजर्विंग है और ये बहुत खुशी की बात है हम सभी बॉक्सर्स के लिए।
क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है, उनके कोच लालचंद राजपूत कहते हैं,
बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है लास्ट 2-3 सीजन से और उसको ये अवार्ड मिला तो बहुत खुशी की बात है। वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, आपने देखा होगा, इज सो हम्बल, जब भी क्रिकेट होता है सिंसियरली अपना प्रैक्टिस करता है। ऐसे डेडिकेटेड लोगों को अगर अवार्ड मिले तो बहुत खुशी की बात है। अब वो इंडिया का वाइस कैप्टन है, शायद फ्यूचर में कप्तान भी हो जाए और मुझे लगता है कि बस ऐसी अच्छी तरक्की करते रहे।
इस बार एथलेटिक्स कोच नागपुरी रमेश, मुक्केबाजी कोच सागर मलदयाल, विराट कोहली के क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा, जिम्नास्टिक कोच बीएस नंदी, तैराकी कोच एस प्रदीप कुमार और कुश्ती कोच महावीर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा। उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार जर्मनी के आंद्रे बैगमैन विंस्टन सालेम एटीपी टूर्नामेंट के पुरुष युगलवर के फाइनल में गुलरुमो गार्सिया लोपेज और हेनरी कॉन्टिनेंट की जोड़ी से 4-6, 7-6, 10-8 से हार गए। लेकिन दूसरी तरफ भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार रोमानिया की मोनिका निकोलेस्क्यू ने अमरीकी ओपन के शुरू होने से ठीक पहले कनेक्टिकट ओपन में महिला युगलवर का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की कैटरीना बोंडारेंको और ताइवान की चुआंग जिया जंग की जोड़ी को 7-5, 6-4 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
खेल खिलाड़ी में जैसा कि आदेश कुमार गुप्त ने आपको बताया कि आज पहलवान साक्षी मलिक को भी राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साक्षी मलिक ने ही रियो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था। साक्षी से हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की और पूछा सबसे पहले कि ये सम्मान उनके लिए कितना अहम है।
मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है ये कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है।
जो पदकों का सूखा था रियो में उसे आपने खत्म किया, उससे आज 10 दिन हो गए, तो 10 दिन में दुनिया कितनी बदल गई है?
बहुत चेंज हो गया है लाइफ, स्पेशल फील होता है, सब लोग स्पेशल फील करा रहे, इतना प्यार दे रहे हैं सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी।
बीते 10 दिन के दौरान आपकी बड़े बड़े खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है।
जी जी जी,
सचिन तेंदुलकर भी हैं उसमें
जी,
वीरेंद्र सहवाग भी हैं, क्या इनसे भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने को लेकर भी आपकी कोई बातचीत हुई है?
बस उन्होंने आगे के लिए हमें मोटिवेट किया है कि अपना गेम पे फोकस रखो। और अभी तो योजना तो है ये, बिल्कुल सीएम सर ने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर बनाया है, तो जी बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी मैं गेम पे फोकस करूंगी और साथ के साथ सभी पेरेंट्स को और सभी लड़कियों को यही मैसेज देती हूँ कि आप लड़कों से कम नहीं हो, जो भी आप करना चाहती हो अपने पेरेंट्स को आके आगे बोलो और अपना हक रखो, आप जितना लड़कों को हक मिलता है उतना लड़कियों को भी मिलना चाहिए।
आपने ये मेडल देश के लिए जीता, तो ये पूरी आपकी जो कामयाबी की कहानी रही है, ये सफर रहा है, ये आप किसके नाम करती हैं?
ये हर उनके नाम है जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे पेरेंट्स, कोचेज, सबका हेल्प है इसमें, हमारी रेसलिंग फेडरेशन सबका साथ है जो मैं यहाँ तक पहुंची और देश के लिए मेडल लेके आई।
ये थी भारतीय पहलवान साक्षी मलिक, जिनसे बात कर रहे थे हमारे साथी वात्सल्य राय। और कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री जिगमार गाब्रियल ने कहा है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर हो रही वार्ता विफल मानी जानी चाहिए। जर्मनी के उप चांसलर गाब्रियल का कहना है कि अमेरिका की मांगों के सामने यूरोपीय देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। लातिन अमरीकी देश कोलंबिया में सबसे बड़े विद्रोही समूह फार्क ने ऐलान कर दिया है कि अब वो सरकार के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा। फार्क ने अपने सभी लड़ाकों को रविवार रात 12 बजे से निश्चित संघर्ष विराम के पालन का आदेश दिया है। यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देशों ने अपने यहां आने वाले प्रवासियों को शरण देने से इनकार करने पर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने आलोचना की है। फ्रांस में एक वीडियो को लेकर विवाद हो गया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में हिजाब पहने दो महिलाओं से रेस्तरां मालिक कहता है कि चरमपंथी मुसलमान होते हैं और मुसलमान चरमपंथी होते हैं। बीबीसी समाचार।
और इसी के साथ समय आ गया है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। एक घंटे बाद फिर मिलेंगे विश्व भारती में। अभी अनुमति दें। नमस्कार।